आगे सबक देखिए भाई, खिलाफन लिल फर्राई फ इन्नहु युजव्विजु तरकीब अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन इम्मा लि अन्नहु तवहम अन्न दुखूल लाम तारीफ इन्नमा हुआ बादल इज़ाफती फहसल तख़फीफ़ बिहस्फ़ तन्वीन बिसबब इज़ाफ़ा ثم عرف باللام وأجاب المصنف عنه في شرحه بأنه غير مستقيم. بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے تفریع ذکر کی تھی ما قبل کے حصر پر. ما قبل میں حصر ذکر ہوا تھا کہ اضافت لفظیہ جو ہے وہ تخفیف کا فائدہ تو دیتی ہے, अलबत्ता वो तारीफ और तख्सीस का फायदा नहीं देती. तो इसी पर तफरीह करते हुए साहिब काफिया ने फरमाया था कि इसी वजह से मररतु बिरजुलिन हसनिल वजही, ये तरकीब तो जायज है, और मररतु बिज़ैदिन हसनिल वजही, ये तरकीब जायज नहीं. वजह यह कि मररतु बिरजुलिन, ये रजुल नकेरा है और आगे हसनिल वजही उसके लिए सिफत बन रही है, और ये सिफत के अंदर इजाफत लफ्जिया है, और इजाफत लफ्जिया वो तारीफ का फायदा नहीं देती, इसलिए हसनिल वजही के अंदर लफ्ज हसन जो है वो अभी भी नकेरा है. जब ये नकेरा है तो ये रजुल के लिए सिफत बन सकता है, और इसी वजह से मररतु बिज़ैदिन हसनिल वजही ये तरकीब जायज नहीं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर ज़ैदिन जो है मौसूफ वो तो मारिफा है, लेकिन हसनिल वजही जो आगे सिफत है वो नकेरा है, और मारिफा के लिए सिफत मारिफा तो आ सकती है लेकिन नकेरा नहीं आ सकती, इसलिए ये तरकीब जायज नहीं. और ये जो तफरीअ की वह मीन सम्मा, मैंने बताया था सम्मा इसमें इशारा है, इसके जरिए माकबल में जो हसर जिक्र हुआ था उसकी तरफ इशारा है, और हसर में तो तीन चीजें थी, तो साहिब जामी ने आपको बतलाया कि इन तीनों की तरफ इशारा है, जबकि बाद शारहीन ने यहां यह तकरीर की कि वह मिन सम्मा के जरिए सारे मजमुए की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात की तरफ इशारा है कि इजाफत लफ्जिया तारीफ का फायदा नहीं देती, इसलिए मररतु बिरजुलिन हसनिल वजही जायज है और मररतु बिज़ैदिन हसनिल वजही जायज नहीं. तो मालूम हुआ उन शारहीन के नजदीक ये इशारा सारे मजमुए की तरफ नहीं है, बल्कि मजमुए में से सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा है कि इजाफत लफ्जिया तारीफ का फायदा नहीं देती, जबकि साहिब जामी फरमाते हैं कि नहीं, ये पूरे मजमुए की तरफ इशारा है. साहिब जामी ने उसकी वजह जिक्र फरमाई कि मजमुए पर जब कोई तफरीअ की जाए तो उसके साथ यह लाजिम नहीं है कि मजमुए के हर हर जुज का उस तफरीअ में दखल हो, बल्कि उस मजमुए के किसी एक जुज का भी तफरीअ पर दखल आ जाए तो यह दुरुस्त है भाई. तो मजमुए पर जब भी तफरीअ की जाए तो मजमुए के हर हर जुज का उस तफरीअ में दखल जरूरी नहीं है. और फिर एक और तफरी आगे इसी पर की थी कि इजाफत लफ्जिया चूंकि तखफीफ का फायदा देती है तो अज़्ज़ारिबा ज़ैदिन और अज़्ज़ारिबू ज़ैदिन, जिसमें तस्निया और जमा की इजाफत हो रही है इसमें फाइल की, और इजाफत की वजह से नूने तस्निया और नूने जमा गिर गए तो तखफीफ आ गई, इसलिए ये अज़्ज़ारिबा ज़ैदिन और अज़्ज़ारिबू ज़ैदिन ये तरकीबें जायज हैं, जबकि अज़्ज़ारिबू ज़ैदिन ये तरकीब जायज नहीं, क्योंकि यह इजाफत लफ्जिया है और इजाफत लफ्जिया तखफीफ का फायदा देती है, और यहां किसी किस्म की कोई तखफीफ नहीं आई भाई, तो यह तरकीब जायज नहीं. और फिर साहिब जामी ने आपको यह भी बतलाया था कि मुनासिब यह था कि इस तफरीअ को मुकदम किया जाता, और इसकी वजह क्या है, मैंने बतलाया था कि पीछे जो हसर जिक्र किया वहां क्या फरमाया साहिब काफिया ने कि वला तुफीदु इल्ला तखफीफन फिल लफ्जी, कि इजाफत लफ्जिया फायदा नहीं देती मगर सिर्फ तखफीफ का, तो तखफीफ का जिक्र वहां था सराहतन कि तखफीफ का फायदा देती है, और तारीफ और तख्सीस का फायदा नहीं देती वो जिमनन समझ में आ रहा था. तो जो चीज सराहतन मजकूर है उस पर जो तफरीअ की यानी तख़फ़ीफ़ सराहतन मज़कूर है और उस पर यह दूसरी तफ़रीअ मुरतब हुई मुरतब की है तो इसको मुकदम होना चाहिए था, और जो चीज ज़िमनन समझ में आ रही थी उसकी तफ़रीअ को बाद में होना चाहिए था। जबकि बाद शारहीन फरमाते हैं कि दूसरी तफ़रीअ में सिर्फ तख़फ़ीफ़ का दखल है, जबकि पहली तफ़रीअ जो है वह वजूब तख़फ़ीफ़ और इंतफाए तारीफ यानी दो चीजों पर मबनी है। इसलिए क्योंकि हसनुल वजह, यहां हसन से तनवीन भी गिरी है और नीज तारीफ नहीं आई, तो तख़फ़ीफ आई है और तारीफ नहीं आई है, तो यहां दो चीजों पर यह तफ़रीअ है और बाद वाली तफ़रीअ एक चीज पर है, तो जो एक चीज पर तफ़रीअ है वह मुफ़रद के दर्जे में है और जो दो चीजों पर तफ़रीअ है वह मुरक्कब के दर्जे में है, लिहाजा मुफ़रद को मुकद्दम होना चाहिए था और मुरक्कब को मुअख़्खर होना चाहिए था, तो इसलिए इस बाद वाली को मुकद्दम होना चाहिए था। लेकिन साहिब जानमी ने बतलाया कि इसको साहिब काफिया ने इसलिए मुअख्खर किया क्योंकि इसके लवाहिकात यानी इससे मुताल्लका बहसें ज्यादा हैं और वो आगे बहसें इसी से मुताल्लका बहसें शुरू हो रही हैं, इसलिए साहिब काफिया ने इस सानी तफरीअ को मुअख्खर रखा, वरना इसको क्या करना चाहिए था, मुकद्दम करना चाहिए था। वजह समझ में आ गई। और फिर उसके बाद आगे जो मतन है वो मतन भी हमने हल किया था। साहिबे काफिया ने क्या बतलाया कि अज़ारिबु ज़ैदिन ये तरकीब जायज नहीं, क्योंकि ये इजाफत लफ्जी है और इजाफत लफ्जी तख़फ़ीफ का फायदा देती है और यहां पर न मुजाफ में कोई तख़फ़ीफ आई है और न मुजाफिले में। अज़ारिबु ज़ैदिन असल में क्या था, अज़ारिबु ज़ैदन, तो अज़ारिबु इसकी तनवीन तो इजाफत से पहले ही गिर चुकी है, तो अज़ारिबु ज़ैदिन जब आपने इजाफत की तो न मुजाफ में कोई तख़फ़ीफ आई और न मुजाफ इले में कोई तख़फ़ीफ आई, तो लिहाजा इसलिए यह जायज नहीं बनी। बखिलाफ इमाम फर्रा के, वो फरमाते हैं कि यह जायज है, अज़ारिबु ज़ैदिन जायज है भाई। और फिर आगे साहिब काफिया ने दो तीन और अलग मसले जिक्र फरमाए जो इसी किस्म के थे। एक तो यह फरमाया कि वज़ाउफल वाहिबुल मीअतिल हिजानी व अब्दिहा, मैंने आपको बतलाया था कि अल मीअतिल हिजानी यहां तीन तरकीबें हो सकती हैं, या तो अल मीआ को बनाओ मौसूफ, अल हिजानी को बनाओ सिफत, और मौसूफ सिफत का एक ही एराब होता है, तो जो एराब अल मीआ पर आएगा वही एराब अल हिजान पर भी आएगा। दूसरी तरकीब यह कि अलमिया को बनाओ मुबदल मीन हो और अलहिजान को बनाओ बदल, और मुबदल मीन हो और बदल का एराब भी एक होता है। और तीसरी सूरत यह है कि अलमी अतिल हिजानी इनको आपस में मुजाफ मुजाफिले मान लें और ये उसी कबील से हो जाएगा वो जो कूफा वाले नहवी जायज करार देते हैं असलासतुल अस्वाबी, कि आदत की इजाफत जब मादूद की तरफ हो तो आदत को मुआरफ बिल्लाम लाना भी जायज है, और यहां पर भी अलमी अतिल हिजानी मिया आदत है और उसकी इजाफत हो रही है मादूद की तरफ तो आदत पर अलिफ्लाम का लाना जायज है, लेकिन साहिब काफिया ने इस तरकीब को ज़ईफ करार दिया था भाई। और फिर ये अलमी अतिल ही जान ये सारा मजमुआ ये मफूल भी ही है अलवाहिब के लिए, तो अलवाहिबुल मी अतल ही जाना, अलवाहिब इसमें फाइल है और अलमी अतल ही जाना ये इसके लिए क्या है मफूल भी ही, और फिर इजाफत कर दी गई तो अलवाहिबुल मी अतिल ही जानी। और मैंने इसका माना बयान किया था कि यहां पर हुआ मुब्तदा महजूफ है, हुवल वाहिबुल मीअतिल हिजानी व अब्दिहा, शायर किसी की तारीफ कर रहा है और कहता है कि हुवल वाहिबु कि वो जो मेरा ममदूह है जिसकी मैं मदा कर रहा हूं जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं वो अता करने वाला है अल मीअतिल हिजानी 100 सफेद ऊंटनियां। हिजान सफेद ऊंटनी को कहते हैं, मुजक्कर को भी मुअन्नस को के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुफरत के लिए भी और जमा के लिए भी, मुफरत भी हिजान है और जमा भी हिजान, तो वो मेरा ममदूह जो है वो 100 सफेद ऊंटनियां हिबा करने वाला है, 100 सफेद ऊंटनियां अता करने वाला है। वह अब्दिहा या अब्दिहा का आतफ है अलमिया पर और अलमिया मुजाफुन इलै था अलवाहिब के लिए, तो अब्दिहा भी क्या है मुजाफुन इलै, तो ये मजरूर है। तो वो मेरा ممدوح जो है वो सफेद सा ऊंटनियां भी हिबा करने वाला है, वह अब्दीहा और उन ऊंटनियों का गुलाम भी, यानी उनका गुलाम भी अता करने वाला है। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि अब्दीहा के ये गुलाम, गुलाम तो इंसानों के होते हैं, ऊंटनियों के गुलाम का क्या माना। मैंने बतलाया था कि अब्दीहा से मुराद उन ऊंटनियों का चरवाहा है और उस चरवाहे को उनका गुलाम कहा, क्योंकि जैसे गुलाम अपने आका की खिदमत के लिए हर वक्त कमरबस्ता रहता है, इसी तरह वो चरवाहा भी हर वक्त अपने मवेशियों की हिफाजत में और उनकी खिदमत में मसरूफ होता है। तो यहां पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि अलवाहिबुल मिअति, अलवाहिब मुजाफ, अलमिअति मुजाफोन इले, तो ये तो इजाफत लफ्जिया है और इजाफत लफ्जिया तखफीफ का फायदा देती है, और यहां पर भी अलवाहिब पर से तनवीन इजाफत से पहले ही गिर चुकी, तो लिहाजा ये भी जायज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बतलाया था कि अलवाहिबुल मिअति ये जायज है, आगे आ रहा है अज़ारिबुर रजुल, अज़ारिबुर रजुली, ये अज़ारिबुर रजुली आपस में मुजाफ मुजाफिले हैं और ये जायज है, तो अलवाहिबुल मिअति भी जायज है जिसमें मुजाफ और मुजाफिले दोनों मुअर्रफ बिल्लाम है, मुजाफ सिफत का सीगा है और मुजाफिले इसमें जिन्स है और दोनों मुअर्रफ बिल्लाम है, यानी मुजाफ भी और मुजाफोन इले भी। तो अज़ारिबुर रजुली जब जायज है तो अलवाहिबुल मिअति भी जायज है, लेकिन साहिब काफिया ने जो इस तरकीब को कमजोर करार दिया और ज़ाइफ करार दिया वो अलवाहिबुल मिअति की वजह से नहीं, बल्कि अलवाहिबु अब्दिहा की वजह से। वजह यह कि अब्दिहा मातूफ है और मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलै का, लिहाजा मातूफुन अलै अलमिअतिल हिजान को हटाएं और इसकी जगह जरा अब्दिहा को रख दें, तो इबारत क्या बन गई, अलवाहिबु अब्दिहा। और अलवाहिबु अब्दिहा ये बिल्कुल अज़ारिबु ज़ैदिन की तरह है, यानी यहां किसी किस्म की कोई तख़फीफ नहीं आई। जब तख़फीफ नहीं आई तो इसको भी मुमतनेअ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुमतनेअ होना चाहिए, लेकिन साहिब काफिया ने इसको ज़ईफ करार दिया। तो आपके जहन में आएगा कि अज़ारिबु ज़ैदिन उसको तो साहिब काफिया ने मुमतनेअ करार दिया, और अलवाहिबु अब्दिहा यह भी उसी जैसी तरकीब बन जाती है, लेकिन इसे साहिब काफिया ने सिर्फ ज़ईफ करार दिया, इसे भी मुमतनेअ करार देना चाहिए था। तो मैंने जवाब दिया था इसका कि भाई चूंकि अलवाहिब बराह रास्त अब्दिहा की तरफ मुजाफ नहीं है, बल्कि अब्दिहा मातूफ है, भाई अगर यह मातूफुन अलै होता, बराह रास्त अलवाहिबु अब्दिहा होता, फिर तो यह मुमतने होता, लेकिन चूंकि यह मातूफ है और बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी गुंजाइश मातूफुन अलै में नहीं होती, मातूफ में उनकी गुंजाइश निकल आती है, तो इसलिए इसको मुमतने करार नहीं दिया बल्कि ज़ईफ करार दिया है। बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी गुंजाइश मातूफुन अलै में नहीं होती, मातूफ में उनकी गुंजाइश होती है, जैसे देखो या हर्फ निदा है, अब कोई मुअर्रफ बिल्लाम है उसको मैं या के साथ निदा देना चाहता हूं, जैसे अल हारिस या अल हसन, तो अब मैं या अल हारिस या अल हसन नहीं कह सकता, क्योंकि या भी आलाय तारीफ है, ये जिस लफ्ज़ पर दाखिल होता है उसको मारिफा बना देता है, अलिफ लाम भी आलाय तारीफ है, जिस लफ्ज़ पर दाखिल होता है उसको मारिफा बना देता है, तो अगर मैं या अल हसन कहूंगा तो ये तो दो आलाय तारीफ का जमा होना लाजिम आएगा, और दो आलाय तारीफ का जमा होना दुरुस्त नहीं, लिहाजा फिर दरमियान में अय्युहा ले आते हैं मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा ले आते हैं, तो या अय्युहल हारिसु या अय्युहल हसनु यूं कहेंगे। तो मालूम हुआ मुअर्रफ बिल्लाम पर या का बराह रास्त दाखिल करना जायज नहीं, लेकिन इसी को अगर आप मातूफ बना दें तो फिर जायज हो जाएगा। मसलन मैं कहता हूं या जैदु वल हारिसु, अब जायज है, हालांकि मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलै का होता है। तो या जैदु अल हारिस इसी तरह है जैसे या बराह रास्त अल हारिस पर दाखिल हो रही हो, लेकिन चूंकि ये मातूफ है इसलिए ये जायज है। बात समझ में आ गई। या जैसे इसी की दूसरी मिसाल मैंने जिक्र की थी जो साहिब जामी भी जिक्र करेंगे, रुब्बा शातिन व सखलतीहा, शात मैंने बताया भेड़ बकरी को कहते हैं, दोनों पर यह लफ्ज बोला जाता है, और सखलतुन ये भेड़ बकरी के बच्चे को कहते हैं। रुब्बा शातिन व सखलतिहा, बहुत सी भेड़ बकरियां और उनके बच्चे। अब ये रुब्बा याद रखो हमेशा नकेरा पर दाखिल होता है, ये मारिफा पर दाखिल नहीं हो सकता, लिहाजा रुब्बा शातिन, देखो ये नकेरा पर दाखिल हुआ, तो रुब्बा सखलतिहा आप नहीं कह सकते, क्योंकि सखलतिहा ये सखला मुजाफ हो रहा है हा जमीर की तरफ, और जमीर मारिफा है, और मारिफा की तरफ जो लफ्ज मुजाफ हो जाए वो भी क्या बन जाता है, मारिफा। तो सखलतिहा इजाफत की वजह से मारिफा बन चुका है। अब आप बराह रास्त रुब्बा सखलतिहा नहीं कह सकते, लेकिन लेकिन मातूफ की सूरत में यह जायज हो जाएगा। आप कहते हैं रुब्बा शातिन व सखलतिहा। अब देखो सखलतिहा ये मातूफ है, और मातूफ का वही हुक्म है जो मातूफन अलह का होता है, तो गोया रुबा बराह रास सखलतिहा पर दाखिल हो रहा है, लेकिन ये जायज है इसलिए क्योंकि क्योंकि सखलतिहा वो मातूफ की सूरत में आया है, बराह रास्त उस पर रुबा दाखिल नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पर भी अलवाहिबी अबदिहा जो है, चूंकि अबदिहा मातूफ की सूरत में आया है, इसलिए यह तरकीब जायज है, अलबत्ता ज़ईफ है भाई। फिर उसके बाद साहिब काफिया ने फरमाया था कि अज़ारिबुर रजुली, यह तरकीब भी जायज है। वजह यह कि यह महमूल है अल हसनुल वजही की, जो मुख्तार और पसंदीदा सूरत है उस पर महमूल है। अल हसनुल वजही के अंदर मैंने बताया था यहां तीन सूरतें हैं, अलवजहू पर आप रफा भी पढ़ सकते हैं, नसब भी और जर भी। अल हसनुल वजहू, अल हसनुल वजहा, अल हसनुल वजही, तीनों सूरतें जायज हैं, लेकिन इनमें पसंदीदा सूरत जो है अल हसनुल वजही इजाफत वाली है। और रफा क्यों पढ़ेंगे, मैंने बताया था अल हसनुल वजहू, ये अलवजहू पर रफा इसलिए पढ़ेंगे कि यह अल हसन के लिए फाइल है, और फाइल क्या होता है, मरफू। तो अल हसन ने अल वजहू को रफा दिया, ये इसके लिए फाइल है। और अब इस सूरत में अल हसन के अंदर कोई जमीर नहीं है, क्योंकि फाइल एक ही आ सकता है, अगर अल हसन के अंदर जमीर को फाइल बनाया तो अल वजहू को आप फाइल नहीं बना सकते, और अगर अल वजहू को फाइल बनाया है तो अल हसन के अंदर कोई जमीर नहीं है। तो लिहाजा अल हसनुल वजहू, इस सूरत में अल हसन के अंदर कोई जमीर नहीं, और अल वजहू के साथ भी कोई जमीर नहीं जुड़ी हुई, लिहाजा ये पसंदीदा नहीं, क्योंकि सिफत का सीगा अपने फाइल वगैरह से मिलकर शिबे जुमला बनता है, और जैसे जुमला को किसी चीज से जोड़ने के लिए रबत जरूरी, इसी तरह शिबे जुमला को भी जोड़ने के लिए रबत जरूरी है, और यहां पर कोई जमीर नहीं जिसके जरिए माकबल से इसको रबत दिया जाए। तो इसलिए अल हसनुल वजहू ये तरकीब ज़ईफ है। और नीज अल हसनुल वजहा ये मनसूब है, अल वजहा ये शबीह मफूल है, ये यूं कहें मुशाबह मफूल है भाई, मुशाबे मफूल इसको करार दिया। वजह यह कि कलाम अरब में हमें इस तरह की मिसालें बाज मिलती हैं कि सिफत मुशब्बा आगे नसब दे रही है, हालांकि सिफत मुशब्बा वो तो फेले लाजिम से बनती है, फेले लाजिम के लिए तो मफूल भी ही आता ही नहीं है, तो फिर ये अल हसनुल वजह ये नसब कैसे दे रही है, तो इसको मफूल भी ही तो नहीं बना सकते, तो फिर उलमाए नहव मजबूर हुए और उन्होंने इसका नाम मुशाबह मफूल रखा, कि ये क्या है, मुशाबह मफूल है, जैसे मफूल भी ही मनसूब होता है, ये भी सिफत की वजह से मनसूब है, तो ये मुशाबह मफूल है। और ये तरकीब भी पसंदीदा नहीं, क्योंकि इस सूरत के अंदर आपको वो जो मनसूब है उसको मुशाबह मफूल करार देना पड़ेगा, लिहाजा पसंदीदा सूरत क्या है, अल हसनुल वजही जर के साथ पढ़ा जाए। तो जैसे अल हसनुल वजही जायज है, इसी पर हमल करते हुए अज़ारिबुर रजुली भी जायज है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों में मुजाफ सिफत का सीगा है, अल हसनुल वजही इसमें हसन सिफत मुशब्बा है, और अज़ारिबुर रजुली इसके अंदर इसमें फाइल सिफत है भाई, तो दोनों के अंदर सिफत का सीगा मुजाफ है, और आगे मुजाफिले इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स किसे कहते हैं, जो जाते मुबहम पर दलालत करे, और ये अर रजुल जो है अज़ारिबुर रजुली, ये अर रजुल से अलिफ लाम हटाएं तो रजुल इसमें जिन्स है, ये जाते मुबहम पर दलालत करता है, यानी किसी गैर मुअय्यन रजुल पर दलालत कर रहा है। और इसी तरह अल हसनुल वजही के अंदर जो अल वजहू है, इससे अलिफ लाम हटा दें तो वजहून, ये भी गैर मुअय्यन वजहून पर दलालत कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें जिन्स जो जाते मुबहम पर दलालत करे। तो दोनों के अंदर अल हसनुल वजही और अज़ारिबुर रजुली दोनों के अंदर मुजाफ सिफत का सीगा है और मुजाफिले इसमें जिन्स है और दोनों मुअर्रफ बिल्लाम है, मुजाफ भी और मुजाफिले भी। तो जब अल हसनुल वजही जायज है तो इसी पर हमल करते हुए अज़ारिबुर रजुली भी जायज है क्योंकि वो भी इसी जैसा है। फिर उसके बाद एक तीसरा मसला जिक्र किया साहिब काफिया ने कि ज़ारिबु का इस पर हमल करते हुए अज़ारिबु का भी जायज है इजाफत के साथ बाज़ उलमाए नह के नजदीक यानी इमाम सीबुवे और उनके जो मुतबईन हैं। भाई याद रखो एक अज़ारिबु का अलिफ लाम के साथ है और एक ज़ारिबु का बगैर अलिफ लाम के है। ये जो बगैर अलिफ लाम के है ये बिल इत्तेफाक मुजाफ और मुजाफिले हैं। उलमाए नह जब भी इसमें फाइल और इसमें मफूल उसके साथ जमीर मुत्तसिल आ जाए मफूल भी ही भाई, जब भी इसमें फाइल और इसमें मफूल के साथ जमीर मुत्तसिल मफूल भी ही बनकर आकर साथ जुड़ जाए तो उलमाए नह इनके दरमियान इजाफत को लाजिम करार देते हैं, इजाफत को लाजिम करार देते हैं। अगरचे यहां पर इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई, तवज्जो है। तो ज़ारिबु का ये ज़ारिब मुजाफ है और काफ जमीर मुजाफुन इलैह तो ये महल्लन मजरूर है। पहले ये क्या थी मफूल बिही, ज़ारिब इसमें फाइल है और काफ जमीर साथ आकर जमीर मुत्तसिल जुड़ी तो ये मफूल बिही है मंसूब है महल्लन और फिर इसकी तरफ इजाफत को लाजिम करार देते हैं उलमाए नहव तो अब ये मजरूर महल्लन है इजाफत की वजह से। तो जैसे ज़ारिबु का इसके अंदर कोई तख़फीफ नहीं आई फिर भी उलमाए नह इसके अंदर इजाफत को लाजिम करार देते हैं तो इमाम सीबवे और उनके मुत्तबईन फरमाते हैं अज़ारिबु का ये भी बिल्कुल ज़ारिबु का जैसा ही है कि दोनों के अंदर मुजाफ क्या है इसमें फाइल या इसमें मफूल है और आगे जमीर मुत्तसिल साथ जुड़ी हुई है जो मफूल भी ही है। तो जब ज़ारिबुका के अंदर इजाफत जायज है तो अज़ारिबुका के अंदर भी इजाफत जायज है तो ये दोनों आपस में मुजाफ मुजाफिले हैं। और जैसे ज़ारिबुका के अंदर इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई अज़ारिबुका के अंदर भी इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई। तो बाकी आम उलमाए नहव जो है वो अज़ारिबुका इसको मुजाफ मुजाफिले नहीं बनाते, ये जिसमें इसमें फाइल मुअर्रफ बिल्लाम है बल्कि वो जमीर मुत्तसिल को मफूल बिही करार देते हैं यानी वो मंसूब है महल्लन। अज़ारिबु का ये काफ जमीर क्या है मंसूब है महल्लन और अज़ारिब इसमें फाइल है और इसमें फाइल पर यहां अलिफ लाम दाखिल है और आपने पढ़ा है इसमें फाइल पर जो अलिफ लाम दाखिल हो वह बमाने अल्लज़ी के होता है यानी इसमें मौसूल। तो अज़ारिबु का किस माना में हुआ अल्लदी यज़रिबु का, तो ये काफ जमीर क्या है मंसूब महल्लन है आम उलमाए नहव के नजदीक लेकिन इमाम सीबवे वगैरह के नजदीक ये आपस में मुजाफ मुजाफिले हैं। भाई ये काफ मजरूर महल्लन है वो इसको महमूल करते हैं ज़ारिबुका पर और ज़ारिबुका के अंदर तो बिल इत्तेफाक आपस में मुजाफ मुजाफिले हैं तो अज़ारिबुका भी उस जैसा है। किस एतबार से उस जैसा है कि दोनों में मुजाफ क्या है सिफत का सीगा और साथ मफूल भी ही क्या है जमीरे मुत्तसिल है और दोनों के अंदर मुजाफ से तनवीन इजाफत से पहले ही गिर चुकी है। तो ये तीन मसले भी साहिब काफिया ने जिक्र फरमाए। पहला मसला क्या जिक्र फरमाया कि अज़ारिबु ज़ैदीन ये तरकीब मुमतनिया है क्योंकि इजाफत लफ्जी है और इजाफत लफ्जी के अंदर तख़फीफ का आना वाजिब है। और नीज फिर इमाम फर्रा का इख्तिलाफ भी जिक्र फरमाया कि उनके नजदीक अज़ारिबु ज़ैदीन जायज है। और फिर उसके बाद साहिब काफिया ने यह मसला भी बतलाया कि अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा इसके अंदर अब्दिहा मातूफुन अलैह है और अलवाहिबु अब्दिहा वाली सूरत यहां बन गई और यह बिल्कुल अज़ारिबु ज़ैदीन जैसी है और अज़ारिबु ज़ैदीन तो मुमतनिया था लिहाजा अलवाहिबु अब्दिहा जो है इसको भी मुमतने होना चाहिए लेकिन चूंकि ये मातूफ के अंदर ये सूरत आई है इसलिए ये मुमतने तो नहीं जायज तो है लेकिन ये तरकीब ज़ईफ है। और फिर उसके बाद साहिब काफिया ने बतलाया अजारिबुर रजुली, यह भी इजाफत लफ्जिया है और यहां भी इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई, लिहाजा इसको भी जायज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह अलहसन उलवजह की मुख्तार सूरत पर हमल करते हुए जायज है। और इसी तरह अजारिबू का यह भी बाज उलमाए नह इमाम सीबे वगैरह के नजदीक आपस में मुजाफ और मुजाफिले हैं और यह इजाफत लफ्जी है और इसको जायज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह जारिबू का बगैर अलिफ्लाम के जो इजाफत है उस पर हमल करते हुए यह जायज है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। भाई मतन तो हम हल कर चुके थे, अब इसको शरा के साथ देखिए। खिलाफ लिल फर्रा फइन्नहु युजव्विज़ु तरकीब अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन इम्मा लिअन्नहु तवहमा अन्न दुखूल लामि तारीफ़ इन्नमा हुआ बादल इज़ाफ़ति फ़हसला तख़फ़ीफ़ु बिहस्वि तन्वीन बिसबबिल इज़ाफ़ति सुम्मा उर्रिफ़ बिल्लाम। भाई मैंने आपको बतलाया कि साहिब काफिया ने क्या बतलाया, अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन मुमतनिया है, अलबत्ता इमाम फर्रा इख्तिलाफ फरमाते हैं, वो फरमाते हैं ये जायज। उसके बाद साहिब काफिया ने एक अलग मसला जिक्र फरमाया कि अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, ये तरकीब ज़ईफ है। उसके बाद एक मसला जिक्र फरमाया कि अज़्ज़ारिबुर रजुली जायज है अलहसनुल वजही पर हमल करते हुए, और फिर एक मसला जिक्र फरमाया अज़्ज़ारिबू का जो उलमा इनको मुजाफ मुजाफिले बनाते हैं वो इसका हमल करते हैं ज़ारिबू का बगैर अलिफ्लाम वाली सूरत पर। तो तीन मसले जिक्र कर दिए साहिब काफिया ने। पहले क्या जिक्र किया कि अज़्ज़ारिबू ज़ैदिन मुमतनिया है, फिर उसके बाद इमाम फर्रा का इख्तिलाफ जिक्र किया और आगे तीन और इजाफत लफ्जी से मुतालिक मसले जिक्र कर दिए। तो आप चाहें तो ये जो तीन मसले इख्तिलाफ के बाद जिक्र किए चाहे तो इनको अलग अलग मसले बना लें, और आप चाहें तो इन सब को इमाम फर्रा का जवाब बना दें। आप चाहें तो इन सब को इमाम फर्रा का जवाब भी बना सकते हैं, और साहिब जामी भी ये बात जिक्र करेंगे। नीज याद रखना, इसके अलावा साहिबे काफिया ने अपनी शरा के अंदर इसका एक और जवाब भी दिया है। मैंने आपको बतलाया था कि साहिबे काफिया ने अपनी किताब काफिया की खुद भी एक शरा लिखी है, तो उसके अंदर साहिबे काफिया ने इमाम फर्रा को एक और जवाब भी दिया है। तो वो जवाब भी मिला लें और ये तीन जवाब भी मिला लें तो कुल चार जवाब हो जाएंगे इमाम फर्रा को। तो आप चाहें तो इन सबको जवाब बना दें, और आप चाहें तो इन तीनों को वज़ाउफल वाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा से लेकर आगे तक इन सबको अलग अलग मसले बना लें। बात समझ में आ गई। तो अलग अलग मसले कैसे बनेंगे वो तो मैंने बयान कर दिया कि हर एक के अंदर इजाफत लफ्जी है। वहां पर साहिब काफिया ने बतलाया कि यह इजाफत लफ्जी जायज है, या तो मातूफ के अंदर चूंकि यह आ रही है इसलिए जायज है, या एक चीज दूसरी चीज पर महमूल होने की वजह से इजाफत लफ्जी जायज है अगरचे वो तख़फीफ का फायदा नहीं दे रही। और आप चाहें तो इमाम फर्रा के लिए जवाब बना दें, और वो एक जवाब जो साहिब काफिया ने अपनी शरा में दिया है वो साहिब जामी भी जिक्र करेंगे। पहला जवाब यह देंगे कि साहिब काफिया ने क्या कहा, अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन तरकीब मुमतनिया। इमाम फर्रा क्या फरमाते हैं, अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन तरकीब जायज है। तवज्जो है, साहिब काफिया ने क्यों कहा कि मुमतनिया है, क्योंकि अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन में कोई तख़फीफ नहीं आई, और इमाम फर्रा फरमाते हैं कि ये जायज है। कहते हैं शायद इमाम फर्रा का यह ख्याल है कि ये जो अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन के अंदर अलिफ्लाम आया है ये इजाफत के बाद आया है, असल में था ज़ारिबुन ज़ैदन बगैर अलिफ्लाम के, ज़ारिबुन ज़ैदन, तो ज़ैदन मफूल भी ही था, फिर ज़ारिब की उसकी तरफ इजाफत की तो ज़ारिबुन से तनवीन गिर गई ज़ारिबु ज़ैदिन, और ज़ारिबु ज़ैदिन चूंकि ज़ारिब अभी भी नकिरा है लिहाजा इस पर फिर अलिफ्लाम भी दाखिल कर दिया तो क्या बन गया, अज़्ज़ारिबु ज़ैदिन। तो यह इजाफत लफ्जी है लेकिन इसके अंदर अलिफ्लाम के दाखिल होने से पहले ही तख़फीफ आ चुकी है तनवीन के गिरने की वजह से, लिहाजा यह जायज है। शायद इमाम फर्रा का यह ख्याल है कि यह अलिफ्लाम इजाफत के बाद आया है इसलिए उन्होंने इसको जायज करार दिया है, लेकिन साहिब काफिया ने अपनी शरा के अंदर इसको रद्द किया है कि नहीं, यह बात जाहिर के खिलाफ है, जाहिर यही है कि अलिफ्लाम पहले आया है और इजाफत बाद में हुई है, जब अलिफ लाम पहले आया तो तनवीन तो अलिफ लाम की वजह से गिर गई, तो इजाफत ने किसी किस्म की तख़फीफ का फायदा नहीं दिया, लिहाजा यह जायज नहीं। पहली दलील और उसका रद्द समझ में आया। दलील इमाम फर्रा ने जिक्र नहीं फरमाई, लेकिन यह फरमाते हैं कि शायद उनका यह ख्याल है यह अलिफ लाम इजाफत के बाद आया है, लेकिन यह उनका कहते हैं महज दावा ही है, इसकी कोई उनके पास दलील मौजूद नहीं। तो यह एक दलील इमाम फर्रा की जिक्र की कि शायद उनका यह ख्याल है और उसको फिर रद्द भी किया। दूसरी दलील ये जिक्र करेंगे कि इमाम फर्रा फरमाते हैं अजारिबु जैदीन जायज है, शायद उन्होंने ये जो शायर का शेर है अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, शायद उन्होंने इससे इस्तेदलाल किया है। अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, इसमें अभी आपने तफसील पढ़ी कि ये अब अब्दिहा का अतफ किस पर है, अलमियातिल हिजान पर, उसको जरा हटाएं और इसकी जगह अब्दिहा ले आए तो क्या बन गया अलवाहिबु अब्दिहा, और अलवाहिबु अब्दिहा बिल्कुल अजारिबु जैदीन जैसी सूरत है। जैसे अजारिबु जैदीन में इजाफत के बावजूद कोई तख़फीफ नहीं आई, इसी तरह अलवाहिबु अब्दिहा में भी इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई। लेकिन यह तो एक अरब का फसीह और बलीग शायर है, अपने शेर के अंदर इसको जिक्र कर रहा है, और जब यह जायज है तो अजारिबु जैदीन भी जायज है, वो भी इसी की तरह है। तो कहते हैं शायद इमाम फर्रा ने इस शायर के इस शेर से इस्तेदलाल किया है, लेकिन बतला दिया साहिब काफी ने कि नहीं भाई ये तरकीब ज़ईफ है, ये तरकीब फसाहत के एतबार से इतनी कुव्वत वाली नहीं है कि आप इससे इस्तेदलाल कर सकें, लिहाजा इमाम फर्रा इससे भी इस्तेदलाल करके नहीं कह सकते कि अज़ारिबु ज़ैदीन जायज है। या तीसरी दलील कि शायद इमाम फर्रा का यह ख्याल है कि अज़ारिबु ज़ैदीन जायज है क्योंकि यह अज़ारिबु रजुली की तरह है। किसकी तरह है? वो जो तीसरी बात आगे जिक्र हुई थी अज़ारिबु रजुली जो महमूल था किस पर, अल हसनुल वजही पर। तो शायद इमाम फर्रा का ख्याल है कि अज़ारिबु ज़ैदीन इसलिए जायज है क्योंकि अज़ारिबु रजुली जायज है, और अज़ारिबु रजुली के अंदर तो इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई और फिर भी वो जायज है, तो अज़ारिबु ज़ैदीन भी जायज है। तो उसका भी जवाब दे दिया कि नहीं भाई कि अज़ारिबु ज़ैदीन को आप अज़ारिबु रजुली पर महमूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है भाई। अज़ारिबु रजुली के अंदर जो मुजाफिले है वो इसमें जिन्स है, अर रजुल मुजाफिले क्या है, इसमें जिन्स है, और नीज वो मुआरफ बिल लाम है, जबकि अज़ारिबु ज़ैदीन के अंदर तो मुजाफिले जैद है जो इसमें जिन्स नहीं है बल्कि अलम है, और नीज वो मुआरफ बिल्लाम भी नहीं है। तो अज़ारिबु ज़ैदीन ये अज़ारिबु रजुली की तरह नहीं, जब ये उसकी तरह नहीं तो उसका हुक्म भी इसको नहीं दे सकते, वो तो जायज है लेकिन ये जायज नहीं। चौथा जवाब ये देंगे कि शायद इमाम फर्रा का ये ख्याल है कि अज़ारिबु ज़ैदीन ये अज़ारिबु का वो जो ज़मीर मुत्तसिल आई थी और वो सिफत का सीगा मुआरफ बिल्लाम था अज़ारिबु का, इसके अंदर इमाम सीबुवै और उनके मुत्तबईन क्या फरमाते हैं कि ये आपस में मुजाफ और मुजाफिले हैं। तो शायद इमाम फर्रा का ये ख्याल है कि जैसे अज़ारिबु का इसके अंदर इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई, लेकिन फिर भी इमाम सीबुवै वगैरह फरमाते हैं अज़ारिबु का के अंदर इजाफत लफ्जी है और यह जायज है, तो अज़ारिबु ज़ैदीन भी इसी तरह है, इसमें भी कोई तख़फीफ नहीं आई और यह भी जायज। तो उसका भी जवाब दे दिया कि नहीं अज़ारिबु ज़ैदीन आप इसको अज़ारिबु का पर महमूल नहीं कर सकते क्योंकि अज़ारिबु का यह तो महमूल है किस पर, ज़ारिबु का बगैर अलिफ लाम के जो है इजाफत उस पर महमूल है, और नीज वो दोनों एक जैसे हैं, ज़ारिबु का और अज़ारिबु का दोनों के अंदर मुजाफ सिफत का सीगा है और आगे मुजाफिले जो है वो ज़मीरे मुत्तसिल है और दोनों के अंदर इजाफत से पहले ही तनवीन गिर चुकी है, लेकिन अज़ारिबु ज़ैदीन तो ऐसा नहीं, इसके अंदर तो मुजाफ इले जो है वो जमीर मुत्तसिल नहीं है, तो लिहाजा उस पर भी महमूल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? आप चाहें तो वज़ाउफल वाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा इसको अलग मसला बना लें, وانما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه, इसको अलग मसला बना लें. और والضارب كوشبهه في من قال انه مضاف حملا على ضاربك, आप इन तीनों को चाहें तो अलग अलग मसले बना लें, और आप चाहें तो इन तीनों को जवाब बना दें इमाम फर्रा के लिए. और एक जवाब वो है जो साहिब काफिया ने अपनी शरह के अंदर जिक्र किया, तो कुल कितने जवाब हो जाएंगे, चार जवाब हो जाएंगे इमाम फर्रा के. लिहाजा इनमें से किसी सूरत में भी किसी भी चीज से इमाम फर्रा इस्तेदलाल नहीं कर सकते कि अज़ारिबु ज़ैदिन जायज है. बात समझ में आ गई. अब देखिए शरा के साथ इस सारे को कहते हैं खिलाफन लिल फर्राई, बखिलाफ इमाम फर्रा के, फइन्नहु युजव्विजु तरकीब अज़ारिबु ज़ैदिन, इसलिए क्योंकि वो जायज करार देते हैं अज़ारिबु ज़ैदिन की तरकीब को. इम्मा, अब वो वजह जिक्र करेंगे, देखो इम्मा या तो इस वजह से, इम्मा लिअन्नहु तवहमा, या तो इस वजह से वो इसको जायज कहते हैं कि उन्होंने ये वहम किया कि अन्न दुखूल अलामी तारीफी इन नमा हुआ बादल इजाफती, कि इलामी तारीफ जो अज़ारिबु ज़ैदिन पर दाखिल हुआ है वो इजाफत के बाद दाखिल हुआ है. फहसला तख़फीफ बिहस्फ़ तनवीनी, तो तख़फीफ हासिल हो चुकी है तनवीन हजफ होने की वजह से बिसबब इजाफती, बसबब इजाफत के. शायद इमाम फर्रा का क्या ख्याल है, अज़ारिबु ज़ैदिन बगैर अलिफ लाम के था, यानी असल में था ज़ारिबुन ज़ैदन, फिर इजाफत की तो तनवीन इजाफत की वजह से गिर गई. ये माना है फहसला तख़फीफ बिहस्फ़ तनवीनी बिसबब इजाफती, तो इजाफत की वजह से तनवीन के हजफ करने से तख़फीफ हासिल हो गई. सुम्मा उर्रिफ़ बिल्लामी, फिर इसमें फाइल को मुआर्रफ बिल्लाम कर दिया गया, यानी इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया गया. व अजाब अल मुसन्निफ़ अन्हु फी शरहिही, और इसका जवाब दिया है मुसन्निफ ने अपनी शरा के अंदर जो उन्होंने काफिया की शरा लिखी है, भी अन्नहु गैरु मुस्तकीमिन, कि ये बात दुरुस्त नहीं है, लिअन्न अल क़ौल बिताख़ीर लामिल मुतक़द्दिमति हिस्सन अलल इज़ाफ़ति मुजर्रदुद्दिआ मुखालिफुल लिज़ाहिरी, लिअन्न अल क़ौल बिताख़ुरिल लामी, इसलिए क्योंकि ये कौल करना कि लाम मुअख्खर है अल मुतकद्दिमति हिस्सन, वो लाम जो हिस्सन यानी जाहिरी तौर पर, वो लाम जो जाहिरी एतबार से मुकद्दम है, यानी लफ्जों के एतबार से मुकद्दम है. भाई देखो अज़ारिबु ज़ैदिन अलिफ लाम शुरू में आ रहा है तो जाहिर के एतबार से और लफ्जों के एतबार से क्या है, अलिफ लाम मुकद्दम है और नीज वो लफ्जों में मौजूद है, और इजाफत वो तो एक मानवी चीज है दरमियान में जो रबत मौजूद है. तो लिहाजा लिअन्न अल क़ौल बिताख़ुर लामी, इसलिए क्योंकि ये कौल के लाम मुअख़्खर है, वो लाम अल मुतकद्दिमति हिस्सन अलल इजाफती, जो जाहिरी तौर पर इजाफत पर मुकद्दम है, हिस्सी तौर पर वो लाम क्या है, इजाफत पर मुकद्दम है. तो ये कौल करना कि ये लाम जो जाहिरी तौर पर इजाफत से मुकद्दम है, इस लाम के बारे में ये कहना कि ये लाम मुअख़्खर है, मुजर्रदुद्दिआइन, ये महज एक दावा ही है, मुखालिफुन लिज़ाहिरी, जो जाहिर के मुखालिफ है. जाहिर यही है कि अलिफ लाम पहले आता है और इजाफत बाद में की जाती है. बात समझ में आ गई. फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्न अल क़ौल बिताख़ुर लाम अल मुतक़द्दिमति हिस्सन अलल इज़ाफ़ती, इसलिए क्योंकि वो लाम जो इजाफत पर हिस्सन मुकद्दम है उसके मुअख़्खर होने का कौल मुजर्रदुद्दिआइन, ये महज एक दावा ही है, मुखालिफुन लिज़ाहिरी, और ये जाहिर के मुखालिफ है. जी ये पहली दलील का जवाब हो गया. शायद उनका ख्याल था कि यह अलिफ लाम इजाफत के बाद आया है, लेकिन यह महज उनका एक दावा है, जाहिर यही है कि अलिफ लाम मुकद्दम है. व इम्मा, अब दूसरी दलील जिक्र करेंगे, व इम्मा लिमा वक़ा फी शेरिल आशा, और या इमाम फर्रा ने उस तरकीब को जायज करार दिया है, किसलिए, लिमा वक़ा फी शेरिल आशा, जो आशा शायर के शेर में वाक हुआ है. इमाम फर्रा ने उस तरकीब को जायज करार दिया है या तो उस वजह से जो पहले गुजरी, व इम्मा लिमा वकाफी शेर अल आशा, या उस वजह से जो आशा के शेर में वाके हुआ है, मिन कौलिही, यानी कि उसका यह कौल, अल वाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, ये वाले कौल के अंदर, इसके अंदर कौन सी तरकीब आई है, अल वाहिबु अब्दिहा वाली जो तरकीब आ रही है, फइन न कौलहू, इसलिए क्योंकि आशा का जो कौल है व अब दिहा बिल जर्री, जर के साथ मातूफुन अलल मिअति, ये किस पर मातूफ है, अलमिया पर मातूफ है, फसार अल माना बे अतिबार अल अतफी, तो अतफ के एतबार से माना हो गया अलवाहिबु अब दिहा, अलवाहिबु अब दिहा हो गया, फहुआ मिन बाब जारिबु जैदीन, तो यह भी अजारिबु जैदीन के बाब से है, यानी जैसे अजारिबु जैदीन में इजाफत से कोई तख़फीफ नहीं आई, अलवाहिबु अब्दिहा में भी इजाफत से कोई तख़फीफ नहीं आई, तो ये उसी के बाब से हुआ, तो फकमा ला यमतनिउ ज़ालिका हैसु अता बिही बाज़ुल बुलगाई ला यमतनिउ हाज़ा, फकमा ला यमतनिउ ज़ालिका, तो जैसे वो मुमतनिअ नहीं है, क्या, अलवाहिबु अब्दिहा, तो जैसे वो मुमतनिअ नहीं है, हैसु, भाई क्यों, कैसे मुमतनिअ नहीं है, कहते हैं हाई सु अता बिही बाजुल बुलागाई, क्योंकि लाए हैं उसको बाज बलीग शुआरा, उसको अपने कलाम के अंदर अपने अशार के अंदर लाए हैं बाज बलीग शुआरा, तो ला यमतनिउ हाजा, तो अजारिबु जैदीन ये भी मुमतनिअ नहीं है, इबारत समझ में आ गई, देखो हैसु ये इल्लत बयान करने के लिए बाज औकात आता है, इसको हैसु तालीलिया कहते हैं, इल्लत बयान करता है, इसका तर्जमा चूंके या क्योंके के साथ करेंगे, और अता बिही, अता याती का माना है आना, और आपने पढ़ा है कभी फेल को मुतादी बनाने के लिए बा लाते हैं, तो ये अता बिही, ये बा इसको मुतादी करने के लिए लाई गई, अता का माना आना और अता बिही का माना लाना, फकमा ला यमतनिउ ज़ालिका, तो कहते हैं जैसे अलवाहिबु अब्दिहा मुमतनिअ नहीं है, हैसु अता बिही बाज़ुल बुलगाई, क्योंकि बाज़े बलीग उसको लेकर आए हैं, यानी अपने कलाम में उसको लेकर आए हैं, तो ला यमतनिउ हाज़ा, तो ये अज़ारिबु ज़ैदीन ये भी मुमतनिअ नहीं, क्योंकि ये भी अलवाहिबु अब्दिहा की तरह है, फअजाब अल मुसन्निफ अनहु बिकौलिही, तो जवाब दिया मुसन्निफ ने इमाम फर्रा के इस बात से, बिकौलिही अपने इस कौल के जरिए, वज़ऊफल वाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, कहते हैं कि ज़ईफ है ये वाली तरकीब ज़ईफ है, यानी अन्न हादल कौल ज़ईफुन, यानी ये वाला कौल, यानी ये वाली तरकीब ज़ईफ है, ला यक़वा फिल फसाहती, ये कुव्वत वाली नहीं है फसाहत के अंदर, बिहैसु युस्तदल्लु बिही, इस तौर पर कि इससे इस्तिदलाल किया जाए, यानी ये जो तरकीब है ये फसाहत के अंदर इतनी कुव्वत वाली नहीं है कि आप इससे इस्तिदलाल कर सकें, आप इसको दलील बना सकें, लिमा अरफ्ता मिन इम्तिनाई मिस्ल ज़ारिबु ज़ैदीन, जैसे कि आप जान चुके हैं यानी अज़ारिबु ज़ैदीन जैसे तरकीबों का मुमतनिअ होना, अज़ारिबु ज़ैदीन जैसी तरकीबों के मुमतनिअ होने को जैसे कि आप जान चुके हैं, और यही तरकीब किसके अंदर आ गई, इस शेर के अंदर भी आ गई, तो लिहाजा ये शेर भी क्या है, फसाहत के एतबार से कमजोर है, ज्यादा कुव्वत वाला नहीं है, लिहाजा आप इससे इस्तेदलाल नहीं कर सकते। बात भी समझ में आ रही है या नहीं, इसके बारे में साहिबे जामिया आगे कुछ और तफसील बयान करेंगे। दूसरी दलील क्या कि शायद इमाम फर्रा ने अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा इससे इस्तेदलाल किया है, क्योंकि इसके अंदर अलवाहिबु अब्दिहा आ रहा है, अलवाहिबु अब्दिहा की तरकीब इसके अंदर आ रही है, तो साहिब काफिया ने उसका जवाब दिया कि आप इस शेर से इस्तेदलाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह तरकीब ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है, क्योंकि अज़ारिबु ज़ैदीन जैसे मुमतनिअ है तो अलवाहिबु अब्दिहा भी उसी की तरह है, यह भी क्या है, इसको भी मुमतनिअ होना चाहिए, लेकिन चूंकि यह मातूफ के अंदर है यह मामला, इसलिए यह मुमतनिअ तो नहीं अलबत्ता ज़ईफ जरूर है, लिहाजा आप इस शेर से भी इस्तेदलाल नहीं कर सकते। ये माना है, जरा तर्जमा फिर देख लीजिए, यानी अन्ना हादल कौला ज़ईफ़ुन, इसलिए क्योंकि ये कौल जो है ये शायर का ये ज़ईफ है। ला यक़वाफिल फसाहति बिहैसु युस्तदल्लु बिही, ये इतनी कुव्वत वाला नहीं है फसाहत में कि इससे इस्तदलाल किया जाए। लिमा अरफ़्त मिन इम्तिनाई मिस्ल ज़ारिबु ज़ैदिन, उस वजह से जो आप जान चुके हैं यानी अज़ारिबु ज़ैदिन जैसी तरकीबों का मुमतना होना, उस वजह से यह शेर क्या है, ज़ईफ है, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसी ही तरकीब है। लिअदमिल फाइदति फिल इज़ाफ़ति, इसलिए क्योंकि इनमें इजाफत कोई फायदा नहीं दे रही, अज़ारिबु ज़ैदिन में इजाफत कोई फायदा नहीं दे रही यानी कोई तख़फ़ीफ हासिल नहीं हो रही। वला यख़फ़ा अन्ना फ़ीही शौबा मुसादरतिन अलल मतलूबी, ये मुश्किल मकाम है, जरा तवज्जो से समझ लें। वला यख़फ़ा, साहिबे जामी फरमाते हैं और ये बात आप पर पोशीदा नहीं, ये बात आप पर मख्फी नहीं, अन्ना फ़ीही शौबा मुसादरतिन अलल मतलूबी। शौब कहते हैं आमेजिश, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला देना, तो ये जो आमेजिश है इसको क्या कहते हैं, शौबुन। और मुसादरा अलल मतलूब, याद रखो मुसादरा अलल मतलूब भाई ये इल्मे मुनाजरा की इस्तेलाह है भाई। सादरा युसादिरु मुसादरतन का माना है कि इसरार के साथ किसी चीज का मुतालबा करना, किसी चीज के मुतालबे पर इसरार करना, ये है मुसादरा। तो ये तो लफ्जी माना मैंने बयान किया, इस्तेलाह के अंदर मुसादरा अलल मतलूब इसे कहते हैं कि आपकी जो दलील है वही आपका दावा भी है, यानी आपने दावे ही को दलील बना दिया। भाई देखिए, एक होता है दावा और एक है दलील, दावा और होता है दलील, और दावे को दलील के जरिए साबित किया जाता है। लेकिन अगर आप एक दावा करें और फिर जब आपसे दलील मांगी जाए, दलील में भी आप उसी दावे को जिक्र कर दें, तो इसको क्या कहते हैं, मुसादरा अलल मतलूब भाई। तो इसमें याद रखो चार सूरतें हैं भाई, चार सूरतें। एक सूरत यह है कि दावे ही को दलील बना दिया जाए, दूसरी सूरत यह है कि दावे को दलील ना बनाएं बल्कि दलील का जुज बना दें। पहली सूरत क्या, दावे को ही दलील बना दें, दूसरी सूरत दावे को दलील का जुज बना दें, तीसरी सूरत दलील ऐसी लेकर आए कि वह दलील खुद मौकूफ है दावे पर, दावा मौकूफ था किस पर, दलील पर। अब आपने जो दलील पेश की वो दलील खुद किस पर मौकूफ हो गई, दावे पर मौकूफ हो गई, ये तीसरी सूरत। चौथी सूरत ये है कि दलील तो दावे पर नहीं मौकूफ लेकिन दलील का एक जुज दावे पर मौकूफ है, तवज्जो है। तो कुल कितनी सूरतें, चार। एक सूरत ये कि दावे ही को दलील बना दें, दूसरी सूरत यह है कि दावे को दलील का जुज बना दें, तीसरी सूरत यह है कि दलील दावे पर मौकूफ हो जाए, चौथी सूरत यह है कि दलील का जुज दावे पर मौकूफ हो जाए। यह आपके हाशिए में तफसील दी हुई है, वहां भी देख लीजिएगा। और याद रखो यह मुसादरा अलल मतलूब बातिल है, क्योंकि इस सूरत में दौर लाजिम आता है। इस सूरत में क्या लाजिम आता है, दौर। दौर कहते हैं तवक्कुफ शैई अला मा यतवक्कफु अला ज़ालिक शै, एक शय उस चीज पर मौकूफ हो जाए कि वो शय खुद इस पर मौकूफ है। तवक्कुफ शैई अला मा यतवक्कफु अला ज़ालिक शै, और इसमें याद रखो फिर किसी एक चीज का भी पता नहीं चलता, मसलन पहली चीज का पता तब चलेगा जब दूसरी चीज का पता चले, और दूसरी चीज का पता तब चलेगा जब पहली चीज का पता चले, तो इसको दौर कहते हैं। जैसे कोई शख्स किसी से पूछता है कि जैद का घर कहां है, वो दूसरा जवाब देता है कि बकर के घर के सामने, वो फिर पहला पूछता है बकर का घर कहां है, तो वो कहता है जैद के घर के सामने। अब देखो इसमें एक भी चीज का पता नहीं चल सकता, ना जैद के घर का पता चल सकता है और ना बकर के घर का, इसलिए क्योंकि जैद का घर कहां है, बकर के घर के सामने, और बकर का घर कहां है, जैद के घर के सामने। देखो अब एक का भी पता नहीं चल सकता, जैद के घर का तब पता चलेगा जब आपको बकर के घर का पता चले, और बकर के घर का आपको तब पता चलेगा जब आपको जैद के घर का पता चले। तो एक का भी पता नहीं चल सकता, जैद के घर का पता मौकूफ हो गया बकर के घर पर, और बकर के घर का पता मौकूफ हो गया जैद के घर पर, तो एक का भी पता नहीं चल सकता भाई। बात समझ में आ गई। तो इसको दौर कहते हैं। तो ये जो मुसादरा अलल मतलूब है इसमें दौर लाजिम आता है, इसलिए ये बातिल है। और लफ्जी माना मैंने बयान कर दिया, मुसादरा अलल मतलूब, मतलूब कहते हैं वो दावा जो है, मुसादरा अलल मतलूब दावे पर इसरार करना। मुतकल्लिम क्या कर रहा है? अपने दावे पर इसरार कर रहा है। और दलील मांगो तो दलील में या वही दावा जिक्र करता है, या वो दावा दलील का जुज होता है, या वो दलील ऐसी जिक्र करता है जो खुद इस दावे पर मौकूफ है, या उस दलील का जुज जो है वो दावे पर मौकूफ होता है। तो चारों सूरतों में दौर लाजिम आता है। तो साहिब जामी फरमा रहे हैं वला यख्फा अन्ना फीही शौबा मुसादरतिन अलल मतलूबी, और यह बात मख्फी नहीं है कि इसके अंदर मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश है। इस जवाब के अंदर यह जो जिक्र किया वज़ाउफल वाहिबुल मीअतिल हिजानी व अब्दिहा, इस जवाब के अंदर मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश है, यानी मुसादरा अलल मतलूब तो नहीं है लेकिन उसकी आमेजिश है इस जवाब के अंदर। वो किस तरह है उसको समझने के लिए जरा अपने सामने लिखिए भाई, ये अपने सामने एक सूरत बना लें फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। लिखिए जी, एक नंबर लिखिए, एक और उसके गिर्द दायरा लगा दीजिए, एक लिखिए और उसके गिर्द दायरा लगा दीजिए, और उसके साथ लिख लीजिए दावा। दावा इससे दो तीन इंच दूर लिख लीजिए, दो नंबर लिखिए, दो नंबर और उसके गिर्द भी दायरा लगा लीजिए, और उसके साथ लिखिए नकीज़े दावा, नकीज़े दावा, नकीज़े दावा लिख लें या खिलाफ दावा लिख लें, जो आपको आसान लगे। भाई दावा मसलन क्या है साहिबे काफिया का? कि अज़ारिबु ज़ैदिन मुमतनिअ है, तवज्जो है। और इमाम फर्रा क्या कहते हैं? कि अज़ारिबु ज़ैदिन जायज है। तो उनका जो दावा है वो साहिब काफिया के दावे की नकीज है। तो नंबर एक क्या है, फर्ज करो ये साहिब काफिया का दावा है और ये क्या अज़ारिबु ज़ैदिन मुमतनिअ है, और नंबर दो इमाम फर्रा का दावा है और वो खिलाफ दावा है, यानी साहिब काफिया के दावे के खिलाफ है, यानी वो फरमाते हैं अज़ारिबु ज़ैदिन जायज है। अब ये जो आपने नकीज़े दावा लिखा इससे कोई एक दो सतरें नीचे छोड़कर लिखिए दलील, भाई दलील, और इसको तीन नंबर दे दीजिए, इस दलील को तीन नंबर दे दीजिए, और जो एक नंबर दावा लिखा था उसके नीचे भी दो तीन सतरें छोड़कर नीचे लिख लीजिए दलील भाई, और इसको चार नंबर दे दीजिए। अब ये जो एक नंबर दावा है इससे लकीर खींचें चार नंबर दलील तक। इसी तरह दो नंबर जो नकीज़े दावा है उससे लकीर खींचिए तीन नंबर दलील तक। बात समझ में आ गई? ये हर दावे के नीचे उसकी दलील आ गई। फिर समझ लें, मुसादरा अलल मतलूब किसे कहते हैं? एक नंबर जरा दावे पे नजर रखें और उसके नीचे चार नंबर दलील पे नजर रखें। मुसादरा अलल मतलूब इसे कहते हैं कि जो आपका दावा हो उसी को आप क्या बना दें, दलील भी बना दें, या उसको दलील का जुज बना दें, या आपने दावे के लिए जो दलील जिक्र की वो दलील खुद मौकूफ है दावे पर, दावा मौकूफ था किस पर, दलील पर, और दलील खुद मौकूफ है दावे पर, या दलील का एक जुज जो है वो मौकूफ है दावे पर, यह है मुसादरा अलल मतलूब। अब देखिए भाई, तो अब ये दो नंबर जो नकीज़े दावा है ये इमाम फर्रा का मजहब है, वो क्या फरमाते हैं अज़ारिबु ज़ैदिन जायज है, और उन्होंने क्या दलील जिक्र की अलवाहिबुल मीअतिल हिजानी व अब्दिहा, मसलन उन्होंने ये दलील जिक्र की है। तो यहां तवज्जो से देखो, ये जो नंबर एक दावा है साहिबे काफिया का, तवज्जो है, ये कब साबित होगा? जब साहिबे काफिया ये जो तीन नंबर दलील है इसको बातिल कर देंगे। ये दलील किसकी है? नकीज़े दावा की, यानी इमाम फर्रा के मजहब की। जब ये दलील बातिल हो जाएगी तो उनका दावा भी क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा, और साहिबे काफिया का दावा साबित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर सुनो, यहां पर एक नंबर जो दावा है साहिबे काफिया का, यानी अज़ारिबु ज़ैदिन मुमतनेअ है, यह तब साबित होगा जब तीन नंबर जो दलील है यानी नकीज़े दावा की, वो नकीज़े दावा की जब दलील बातिल होगी तो नकीज़े दावा यानी अज़ारिबु ज़ैदिन का जवाज भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा और साहिब काफिया का मजहब साबित हो जाएगा। तो यहां देखो भाई, दलील क्या थी, अलवाहिबुल मिअतिल, ये तीन नंबर पे नजर रखें, ये अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दीहा, और क्या कहा ये ज़ईफ है, क्यों ज़ईफ है, क्योंकि अलवाहिबु अब्दीहा की सूरत बन गई और अलवाहिबु अब्दीहा की सूरत ज़ईफ है, क्यों ज़ईफ है, क्योंकि ये अज़ारिबु ज़ैदिन जैसी है। तो दलील को बातिल करने के लिए अपने दावे को दलील बना दिया, उनकी दलील को बातिल करने के लिए अपने दावे को दलील बना दिया। तो देखो इसमें मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश है, मुसादरा अलल मतलूब तो नहीं, मुसादरा अलल मतलूब तो तब लाजिम आता जब अपने दावे को साबित करने के लिए इसी दावे को दलील बनाते या दलील का जुज बनाते वगैरह, लेकिन अपने दावे को साबित करने के लिए दलील नहीं बनाया बल्कि मुखालिफ का जो दावा था उसकी दलील को, उसकी दलील को, जो तीन नंबर है जो मुखालिफ की दलील है उसको बातिल करने के लिए अपने दावे को दलील बना दिया। बात समझ में आ गई, इसके नीचे जरा दो चार लाइनें भी लिख लीजिए ताकि बात पूरी आपके जहन में रहे। नीचे लिखिए, दावा तब साबित होगा, दावा तब साबित होगा जब नकीज़े दावा की दलील बातिल होगी, जब नकीज़े दावा की दलील बातिल होगी। लिख लिया
जी।
फिर देखिए, दावा तब साबित होगा जब नकीज़े दावा की दलील बातिल होगी, और यहां नकीज़े दावा की दलील को, और यहां नकीज़े दावा की दलील को बातिल करने के लिए, को बातिल करने के लिए खुद दावा को ही दलील बना दिया गया, खुद दावा को ही दलील बना दिया गया, यानी अपने दावे के जरिए, यानी अपने दावे के जरिए मुखालिफ की दलील को बातिल करके, मुखालिफ की दलील को बातिल करके अपने दावे को साबित किया गया, अपने दावे को साबित किया गया। बात समझ में आ गई, दावा कब साबित होगा, एक नंबर जब तीन नंबर दलील क्या हो जाएगी, बातिल, जब तीन नंबर दलील बातिल होगी तो दो नंबर दावा भी क्या हो जाएगा, बातिल, जब वो बातिल हो जाएगा तो एक नंबर दावा क्या हो जाएगा, साबित। तवज्जो है, फिर नक्शे पे नजर रखो, एक नंबर दावा कब साबित होगा, जब दूसरे दावे की जो दलील है यानी तीन नंबर दलील है ये दलील जब बातिल हो जाएगी तो दो नंबर यानी नकीज़े दावा क्या हो जाएगा, वो भी बातिल, जब वो बातिल होगा तो एक नंबर दावा क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस तीन नंबर दलील को बातिल करने के लिए किसको दलील बनाया, अपने ही दावे को दलील बना दिया कि ये अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दीहा क्यों ज़ईफ है, क्योंकि ये अज़ारिबु ज़ैदिन जैसा है। भाई यही तो आपका दावा था, आप बातिल कैसे कर सकते हैं दूसरे की दलील को इसके जरिए। बात समझ में आ गई, तो देखो अपने दावे के जरिए मुखालिफ की दलील को बातिल करके अपने दावे को क्या कर दिया गया, साबित कर दिया गया। तो ये मुसादरा अलल मतलूब तो नहीं, लेकिन इसमें मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश है। मुसादरा अलल मतलूब कब होता, मुसादरा अलल मतलूब तब होता अगर अपने दावे के इस बात के लिए जो चार नंबर दलील है वो ऐने दावा होती या दावे का जुज होती या दावे पर मौकूफ होती या उसका जुज दावे पर मौकूफ होता, फिर होना था मुसादरा अलल मतलूब। तो यहां ये चार नंबर दलील की वजह से होता तो फिर तो मुसादरा होना था, लेकिन ये दलील कैसे बनाई कि तीन नंबर जो मुखालिफ की दलील है उसको बातिल किया अपने दावे के जरिए। तो मुसादरा अलल मतलूब तो नहीं, लेकिन मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश है इसके अंदर। बात अच्छी तरह समझ में आ गई, ये मुश्किल मकाम था, चलिए हल हुआ भाई। तो कहते हैं वला यख्फा अन्ना फीही शौबा मुसादरतिन अलल मतलूबी, और ये बात पोशीदा नहीं है कि इसके अंदर मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश है। अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल, अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल के जरिए कमजोर जवाब जिक्र किया जाता है, इंतहाई कमजोर जवाब उसको अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल के जरिए जिक्र किया जाता है। और तकदीर इबारत यूं है, अल्लाहुम्मा ला मखलस ली अन हाज़ा ले एतराज़ी, अल्लाह मेरे लिए इस एतराज से छुटकारे की कोई सूरत नहीं, इल्ला अय्युकाल, मगर यह कि यूं कहा जाए। यूं कहकर अब आगे कमजोर सा जवाब जिक्र कर देंगे और कोई जवाब नहीं इसका। तो अल्लाहुम्मा इल्ला युकाल के जरिए भी कमजोर जवाब जिक्र होता है, वकद युजाबु इसके जरिए भी कमजोर जवाब जिक्र होता है। तो अब साहिब जामी जवाब देंगे, अल्लाहुम्मा इल्ला युकाल, मगर यह कि यूं कहा जाए, अल मुरादु बिही के मुराद यह है, यानी साहिब काफिया की मुराद यह है कि अन्नहु ज़ईफुन फिल इस्तिदलाली बिही, कि ये जो आशा, ये जो शायर का शेर है इससे इस्तेदलाल करना ज़ईफ है। पीछे आइए, ये जो मतन आया था, वज़ाउफल वाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, वज़ाउफा और ज़ईफ है, क्या बतलाया था, ये तरकीब ज़ईफ है, ये तरकीब ज़ईफ है, ये पहला जवाब था और इसमें मुसादरा अलल मतलूब की आमेजिश थी। और क्यों ज़ईफ है, क्यों कमजोर है यह तरकीब, कहते हैं क्योंकि यह ज़ारिबु ज़ैदीन जैसी है। और दूसरा जवाब अब देने लगे हैं साहिबे जामी, वो फरमाते हैं ज़ऊफा का ये माना नहीं है कि ये तरकीब ज़ईफ है, ये तरकीब ठीक है, यूं कहो, दूसरा जवाब सुनो, ये तरकीब ठीक है लेकिन इससे इस्तिदलाल ज़ईफ है, ये तरकीब ठीक है लेकिन इससे इस्तिदलाल ज़ईफ है। भाई फर्क समझ में आ गया दोनों में, कहते हैं अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल, मगर यह कि यूं कहा जाए, अल मुरादु बिही के ये जो ज़ाउफा जिक्र किया गया इससे मुराद यह है कि अन्नहु ज़ईफुन फिल इस्तिदलाली बिही, कि यह शेर ज़ईफ है इस बात में कि इससे इस्तिदलाल किया जाए। मालूम है तरकीब के एतबार से ज़ईफ नहीं बल्कि इस्तिदलाल के एतबार से ज़ईफ है, इससे इस्तिदलाल नहीं कर सकते। क्यों, कहते हैं इज़ला नस फीही अलल जर्री, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई नस नहीं है जर पर, कोई नस नहीं है जर पर, यानी यानी ये जो वअब्दिहा आया है ये अब्दी के जर पर कोई नस, कोई सराहत नहीं है भाई, कोई तसरी नहीं की उलमा ने। तो ये जवाब दिया जा सकता है कि इज़ला नस फीह अलल जरी, कि ये वअब्दिहा पर जर की कोई तसरीह नहीं है, फइन्नहु यहतमिलु नस्बा, क्योंकि ये नस्ब का भी इहतमाल रखता है कि वअब्दिहा न हो वअब्दहा हो, दाल पर फतहा हो, फइन्नहु यहतमिलु नस्बा, ये नस्ब का भी इहतमाल रखता है, हमलन अलल महल्ली, महल पर हमल करते हुए। भाई मैंने बतलाया था अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी, असल में था अलवाहिबु अलमिअतल हिजाना, ये अलमिअतल हिजाना मफूल भी ही है, और फिर इसकी तरफ अलवाहिब की इजाफत कर दी गई तो अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी हो गया। तो अलमिअतिल हिजानी लफ्जों के एतबार से मजरूर है, मुजाफिले है, लेकिन महलन मनसूब है क्योंकि यह मफूल भी ही है अलवाहिब के लिए, सिफत का सिगा मुजाफ हो रहा है अपने मामूल यानी मफूल बिही की तरफ। तो अलमियात अल हिजाना ये क्या है, महल के एतबार से मनसूब है, मफूल बिही है। तो वह अब्दहा इसको भी मनसूब पढ़ें, किस पर हमल करते हुए, अलमियात अल हिजान के महल पर हमल करते हुए, महल के एतबार से वह मनसूब है, मफूल बिही है, और लफ्जों के एतबार से मजरूर है, मुजाफिल है। तो ये माना है क्योंकि फइन नहु यहतमिलु, ये जो वअब्दिहा है ये इहतमाल रखता है, अन्नस्बा नसब का भी, हमलन अलल महल्ली उस अलमियातिल हिजान के महल पर हमल करते हुए, औ अला अन्नहु मफ़ूलुन माहू, या ये मनसूब है इस बात पर हमल करते हुए कि यह मफ़ूल माहू है। वअब्दहा क्या है, मफ़ूल माहू, मफ़ूल माहू किसे कहते हैं जो वो बमाने मा के बाद आए और मनसूब होता है, जाअनी ज़ैदुन व अमरन, जाअनी ज़ैदुन व अमरन, ऐ जाअनी ज़ैदुन मा अमरिन, तो ये वो बमाने मा के बाद जो आता है इसे मफूल माहू कहते हैं और मनसूब होता है, आप पढ़ चुके हैं। कहते हैं औ अला अन्नहु मफूल माहू, या ये महमूल है मफूल माहू होने पर, यानी ये मनसूब है। औली अन्नहु कद युतहम्मलु, ये तीसरी वजह जिक्र कर रहे हैं। एक जवाब क्या दिया कि इसके अंदर जर की कोई तसरीह ही नहीं है, हो सकता है ये क्या हो वाबदिहा मजरूर ना हो बल्कि मनसूब हो, या ये कह सकते हैं आप कि मजरूर तो है वाबदिहा लेकिन ये मातूफ है, ये क्या है ये मातूफ है और मातूफ के अंदर उन चीजों की गुंजाइश होती है जिसकी मातूफुन आलय में गुंजाइश नहीं, लिहाजा अलवाहिबु आबदिहा बन गया। लेकिन क्या यह बराह रास्त बना या मातूफ के तौर पर बना? मातूफ के तौर पर बना, तो मातूफ के तौर पर तो इसमें गुंजाइश निकल आई अलवाहिबु आबदिहा, लेकिन अजारिबु जैदिन यहां तो आतफ नहीं है, यहां तो बराह रास्त अजारिब जैद पर दाखिल हो रहा है, तो अलवाहिबु आबदिहा की तो गुंजाइश निकल आती है लेकिन अजारिबु जैदिन की तो गुंजाइश नहीं निकलती। जी बात समझ में आ गई। औली अन्नहु कद युतहम्मलु फिल मातूफ मा ला युतहम्मलु फिल मातूफ अलैहि, या इसलिए क्योंकि मातूफ के अंदर बर्दाश्त कर लिया जाता है मा ला युतहम्मलु फिल मातूफ अलैहि, जिसको मातूफ अलैह में बर्दाश्त नहीं किया जाता, ये यूं तर्जमा कर लें। औली अन्नहु कद युतहम्मलु फिल मातूफ मा ला युतहम्मलु फिल मातूफ अलैहि, या इसलिए क्योंकि मातूफ के अंदर गुंजाइश होती है उस चीज की जिसकी मातूफुन अलैह में गुंजाइश नहीं होती। बात समझ में आ गई। बा मुहावरा तर्जमा, वरना तहम्मुल का माना है बर्दाश्त करना, तो मातूफ में वो चीज बर्दाश्त कर ली जाती है जिसको मातूफुन आलय में बर्दाश्त नहीं किया जाता। कमाफी रुब्बा शातिन व सखलतिहा, रुब्बा शातिन व सखलतिहा, बहुत सी भेड़ बकरियां और उनके बच्चे। है सुजा जहाजत तरकीबू, क्योंकि ये तरकीब जायज है। वलम यजुज रुब्बा सखलतिहा, और रुब्बा सखलतीहा जायज नहीं है। बिदखाली रुब्बा अला सखलतीहा, बई सूरत के रुब्बा को ही सखलतीहा पर दाखिल कर दिया जाए। बिदूनी लातफी, बगैर आतफ के, क्योंकि रुब्बा हमेशा किस पर दाखिल होता है? नकिरा पर दाखिल होता है, मारिफा पर दाखिल नहीं होता। तो रुब्बा को सखलतुहा पर बराह रास्त दाखिल नहीं कर सकते। वल बैतु बि तमामी ही, और पूरा शेर यूं है अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा उज़न युज़ज्जी खल्फहा अतफालहा। तवज्जो है, फिर देखिए अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा उज़न युज़ज्जी खल्फहा अतफालहा। शेर का माना यही समझ लें, अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, और मेरा जो ममदूह है वो सफेद 100 ऊंटनियां भी हिबा करने वाला है व अब्दिहा और उनका गुलाम भी। रूजन, रूजन जमा है आइज की भाई, और आपको बतलाएंगे साहिब जामी कि आइज वो ऊंटनी जो नए बच्चों वाली हो, यानी जिसने नया नया बच्चों को जन्म दिया हो, उसको क्या कहते हैं? आइज। और इसकी जमा क्या है? रूज। और ये हाल वाके हो रहा है अलमिया से, और अलमिया माना के एतबार से क्या है? मफूल भी ही है, और हाल भी किसकी हालत बयान करता है? फाइल की या मफूल की। तो ये उजन इस हाल में कि वो जो ऊंटनियां हैं वो नए बच्चों वालियां हैं, वो ऊंटनियां नए बच्चों वालियां हैं। जज्जा युज्जी, जज्जा युज्जी का माना होता है नरमी से हांकना, जानवरों के रेवड़ को हांका जाता है, तो नरमी से जानवरों के रेवड़ को आराम से हांकना, इसको क्या कहते हैं? जज्जा युज्जी। और युज्जी गायब का सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और इसके अंदर जमीर जो है वो अब्द उनको लौट रही है। युज्जी वो गुलाम जो है उनको हांक रहा है। खल्फहा उन ऊंटनियों के पीछे, वो गुलाम हांक रहा है। खल्फहा उन ऊंटनियों के पीछे, किस चीज को हांक रहा है? अतफालहा उनके बच्चों को, वो गुलाम उन ऊंटनियों के पीछे उनके बच्चों को हांक रहा है। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देखिए, अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अब्दिहा, मेरा ममदूह जो है वो 100 सफेद ऊंटनियां और उनका चरवाहा जो है वो अता करने वाला है। रूजन, इस हाल में कि वो जो ऊंटनियां हैं वो नए बच्चों वालियां हैं। युजज्जी खल्फहा अतफालहा, और वो जो चरवाहा है वो जो उनका गुलाम है वो उन ऊंटनियों के बच्चों को और ऊंटनियों के पीछे नरमी से हांक रहा है। तर्जमा समझ में आ गया जी। युजज्जी, ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है और जमीर किसको राजे? आबद को। कौन हांक रहा है? तवज्जो है, कौन हांक रहा है? वो गुलाम। और किसको हांक रहा है? अतफालहा, ये अतफालहा मफूल भी ही है। और आगे साहिब जामी बतलाएंगे कि ये युजज्जी भी हो सकता है और हो सकता है ये मुअन्नस मजहूल का सीगा हो। तुजज्जा, हांका जा रहा है किसको? अतफालुहा, उन ऊंटनियों के बच्चों को। तो इस सूरत में तुजज्जा फेल मजहूल होगा और अतफालुहा इसके लिए नाई फाइल बन जाएगा। तवज्जो है, पहले युजज्जी के अंदर जमीर किसको राजे? फाइल कौन है? वो आबद भाई। और अतफालहा उसके लिए क्या बन रहा था? मफूल। और अगर इसको तुजज्जा पढ़ा जाए फिर अतफालुहा इसके लिए नाइबुल फाइल बनेगा। फिर क्या तर्जमा होगा? कि तुजज्जा खल्फहा अतफालुहा, उन ऊंटनियों के पीछे उनके बच्चों को हांका जा रहा है। देखिए अब ये सारी तशरी करेंगे साहिब जामी। ऐ ममदूहुल वाहिबुल मिअतिल हिजानी, यानी शायर का जो ममदूह है जिसकी वो मदा कर रहा है वो सफेद 100 ऊंटनियां हिबा करने वाला है जी। हिजान का क्या माना है? अयिल बीस मीना नूकी, 20 जमा है अबयज की, नूक जमा है नाकतुन की। अलमिअतिल हिजान का तर्जमा कर रहे हैं। अयिल बीस मीना नूकी, यानी के सफेद मीना नूकी ऊंटनियों में से। यस्तवी फीहि अलजमउ वलवाहिदु, और इस हिजान के अंदर जमा और वाहिद बराबर हैं, यानी मुफरद भी हिजान और जमा भी हिजान। वल हिजान सिफतुन लिलमिअति औ बदलुन अनहा, मैंने आपको तीन तरकीबें बताई थी। अलमिअतिल हिजानी, मिया को बनाओ मौसूफ, अलहिजान को बनाओ उसकी सिफत। दूसरी तरकीब क्या? मिया को बनाओ मुबदल मिनहु और अलहिजान को बनाओ बदल। और तीसरी तरकीब क्या थी? कि ये असलासतुल अस्वाब की कबील से है, आपस में मुजाफ और मुजाफिले हैं। तो कहते हैं वल हिजान सिफतुन लिलमिअति औ बदलुन अनहा, और ये हिजान का लफ्ज़ ये मिया के लिए सिफत है, औ बदलुन अनहा या उससे बदल है। औ मिन कबील सलासतिल अस्वाबी कमा हुआ मजहबुल कूफियति, और या ये असलासतुल अस्वाब की कबील से है जैसे कि कूफा वालों का मजहब है। कूफिया, इसके अंदर ये या मुशद्दद है, निस्बत वाली है। तवज्जो है, लाहौरियुन और लाहौरियतुन, इसी तरह कूफियुन और कूफियतुन। कमा हुआ मजहबुल कूफियति, जैसे कि कूफा वालों का मजहब है, जैसे कि कूफा वालों का मजहब है। और इनकी तरफ देखो, जमा है और जमा बताविले जमातुन किसके हुक्म में होती है? वाहिद मुअन्नस, इसीलिए कूफिया कहा। यह जमीर तमाम कूफा वाले उलमाए नहव की तरफ राजे कर दी। तो जमा बताविले जमातुन किसके हुक्म में? वाहिद मुअन्नस, तो उनकी तरफ वाहिद मुअन्नस की जमीर राजे की, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो इसमें मंसूब होता है इसके अंदर भी जमीर होती है। ये इसमें मंसूब है, देखो मफूल वजन पर, तो इसके लिए नाई फाइल चाहिए। तो लाहौरियुन के अंदर, लाहौरियुन इसमें मंसूब है और इसके अंदर हुआ जमीर नाइबुल फाइल है। और लाहौरियतुन ये मुअन्नस है, इसके अंदर हिया जमीर नाइबुल फाइल है। तो इसी तरह अलकूफिया, इसके अंदर भी हिया जमीर नाइबुल फाइल है भाई। कमा हुआ मजहबुल कूफियति, जैसे कि कूफा वालों का मजहब है। वा अबदीहा ऐ राईहा, मैंने बताया था अबदीहा, उन ऊंटनियों का गुलाम। गुलाम तो ऊंटनियों का नहीं होता, गुलाम तो इंसानों का होता है। तो जवाब दिया था कि गुलाम से क्या मुराद है? उनका चरवाहा, वो ही जिक्र कर रहे हैं। वह अबदिहा ऐ राईहा, यानी उनका चरवाहा। तशबीहन लहू बिल अबदी, इस चरवाहे को तशबीह देते हुए गुलाम के साथ। लिकियाम ही भी हक की खिदमतीहा, इस वजह से कि वो उनकी खिदमत के हक के लिए खड़ा रहता है। चरवाहा जानवरों की खिदमत के हक में खड़ा रहता है, जैसे कि गुलाम आका की खिदमत के लिए तैयार रहता है। औ अबदिहा हकीकतन, या ये अबदिहा ये हकीकतन है, यानी हकीकतन उनका गुलाम है। हकीकतन उनके गुलाम का क्या माना? यानी वो मुतायन ही उनकी खिदमत के लिए है। तवज्जो है, देखो पहली सूरत में आब्दिहा मालूम हुआ आब्द बोलकर राई मुराद है, यानी हकीकी माना में आब्द इस्तेमाल नहीं। दूसरी सूरत में आब्द बोलकर आब्द ही मुराद है, यानी हकीकत में वो उन ऊंटनियों का गुलाम है। भाई हकीकत में कैसे गुलाम है? कहते हैं माना यह है कि वो मुतायन ही उनकी खिदमत के लिए है और किसी की खिदमत वो करता ही नहीं, तो गोया वो हकीकत में ही उनका गुलाम है। वो गुलाम तो उन ऊंटनियों के मालिक का है, लेकिन उसको उसने मुतायन ही उन ऊंटनियों की खिदमत और हिफाजत के लिए कर दिया है, तो उन ऊंटनियों के साथ भी उस गुलाम का ताल्लुक आ गया, लिहाजा उनके गुलाम कहना भी सही हुआ। वो गुलाम तो ऊंटनियों के मालिक का है, लेकिन वो मालिक ने मुतायन ही किस लिए किया है? ऊंटनियों के लिए मुतायन किया है, तो ऊंटनियों के साथ भी उस गुलाम का ताल्लुक आ गया या नहीं आ गया, लिहाजा उन्हीं का गुलाम कहना भी ठीक हो गया। बात समझ में आ गई। कहते हैं औ अबदिहा हकीकतन, या हकीकतन उनका गुलाम जो है वो मुराद है। भी इजाफती ही ली अदना मुलाबसतीन, कि इसकी इजाफत की गई है अदना मुलाबसत की वजह से। अदना का माना कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा, और मुलाबसत ताल्लुक। अदना ताल्लुक की वजह से इसकी इजाफत कर दी गई। जैसे मैंने बयान किया गुलाम तो किसका है? आका का है, लेकिन उसको उसने मुकर्रर ही किस लिए किया है? इन ऊंटनियों के लिए मुकर्रर किया है, तो ऊंटनियों के साथ भी अदना मुलाबसत और अदना ताल्लुक आ गया या नहीं आ गया, तो गोया उन्हीं का गुलाम है। बात समझ में आ गई। तो इस सूरत में आब्द का लफ्ज अपने हकीकी माना में है। पहली सूरत में आब्द बमाने राई और दूसरी सूरत में आब्द अपने हकीकी माना में। आगे देखिए भाई, उजन बिदालिल मुअजमती जमउ आइजिन ऐ हदीसातिन नताइज। उजन मैंने आपको बताया उज जमा है आइज की, और आइज वो ऊंटनी जो नए बच्चे वाली हो, यानी जिसने नए नए अभी बच्चों को जन्म दिया हो। तो कहते हैं उजन बिजालिल मुअजमती, कि उजन जाले मुअजमा के साथ है। आजमा या अजमू के माने होते हैं नुकता लगाना, यानी ये जाले मुअजम के साथ है, नुकते वाले जाल के साथ है। एक है दाल, वो बगैर नुकते के है, और जाल क्या है? नुकते वाला। तो बाज औकात भाई हमारे उलमा का तरीका है, जब किसी लफ्ज के इश्तबा का खतरा हो, एक में नुकता आता है एक में नुकता नहीं आता, तो वहां लफ्जों में उसकी सराहत कर देते हैं। मसलन जैसे दाल वो बगैर नुकते के है और जाल वो नुकते के साथ है, तो फिर अब जब जाल लिखेंगे तो वहां लफ्जों में लिख देंगे कि ये नुकते के साथ है, और अगर दाल लिखना हो जहां इश्तबा का खतरा हो तो वहां वो लफ्जों में लिख देते हैं ये बगैर नुकते के है, ताकि अगर कातिब गलती से नुकता डालना चाहिए था वो नहीं डालता, या वो नुकता नहीं डालना चाहिए था वो गलती से नुकता डाल देता है, तो पढ़ने वाले को पता चल जाए। तो यहां मुअज्जम का क्या माना? नुकते वाला। इसी तरह रा और जा, देखो रा बगैर नुकते के है और जा नुकते के साथ है, तो जहां इश्तबा का खतरा हो लफ्ज रा के साथ है तो फिर वहां वो लिख देते हैं कि ये बगैर नुकते के है, या जा है वो नुकते वाली है और इश्तबा का खतरा है कि कोई रा ना पढ़ दे इसको, या कोई कातिब नुकता भूल जाए, तो वहां फिर वो लिख देते हैं कि नुकते वाला है। अब अगर वो नुकता भूल भी जाए, ये अल मुअजमा नुकते वाला, ये पूरा लफ्ज जब आगे आ गया तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये दाल नहीं है बल्कि जाल है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा उजन बिजाल मुअजमती, कि ये जाल मुअजम के साथ है, यानी नुकते वाले जाल के साथ है, ये दाल नहीं है भाई। कहते हैं बिजाल मुअजमती जमउ आइजिन, ये आइज की जमा है। ऐ हदीसात नताइज, यानी हदीसात नताइज, हदीस का माना है नया, कोई नई चीज उसको क्या कहते हैं? हदीस। और नताई जमा है नतीजा की, और नतीजा का एक माना आता है ऊंटनी का बच्चा। हदीसातुन नताइज, जो नई बच्चों वालियां हैं भाई। ऐ हदीसातिन नताइज हाल मिनल मिआति, यह हाल है मिया से। युजज्जी बिजाइल मुअजमति, और युजज्जी जो है यह जाय मुअजमा के साथ है, यानी जा के साथ है, रा के साथ नहीं है। वल जीमी, और जीम के साथ है। अला सीगतिल मालूम इल मुजक्करी, और ये मालूम मुजक्कर का सीगा है, यानी युजज्जी है। अय्यसूक, मैंने बतलाया था जज्जा युजज्जी का क्या माना है? हांकना, नरमी से हांकना। अयसूक यानी हांक रहा है। व फाइलुहु जमीरुल अब्द, और फाइल इसका जो है वह अब्द की जमीर है इसके अंदर। व अतफालहा मनसूबुन अलल मफूलियती, और अतफालहा मनसूब है मफूल होने की वजह से। औ अला सीगतिल मजहूल मुअन्नसी, या ये जो युज़ज्जी है ये मजहूल मुअन्नस के सीगे पर है, यानी युज़ज्जी नहीं है बल्कि तुज़ज्जा है। सीगा कौन सा है? मुअन्नस का और मजहूल है तो तुज़ज्जा। औ अला सीगतिल मजहूल मुअन्नसी, या ये मजहूल मुअन्नस के सीगे पर है। व अतफालुहा मरफूउन अला अन्नहु मफ़ऊलुन मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु, और अतफालुहा मरफू है इस बिना पर कि ये उसके लिए मफूल मालम युसम्मा फाइलुहू है, यानी नाइबुल फाइल है। वह हकीकतुल अम्री ला तनकशिफु इल्ला बाद मारिफति हरकति हर्फिर रवी मिनल कसीदा। साहिब जामी ने आपको बतलाया कि या तो युज़ज्जी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है और अतफालहा इसके लिए मफूल है, और या तुज़ज्जा है, वाहिद मुअन्नस गायब का मजहूल का सीगा है और अतफालुहा इसके लिए नाइबुल फाइल है। आगे फरमा रहे हैं साहिब जामी कि हकीकत हाल का पूरा पता नहीं चल सकता जब तक कसीदे का जो हर्फ रवि है उसकी हरकत का पता ना चल जाए। जब तक कसीदे का जो हर्फ रवि, कसीदे के अंदर हर शेर का जो आखिरी मुतहर्रिक हर्फ है उसको हर्फ रवि कहते हैं, और उसी पर कसीदे की बुनियाद होती है। अगर आखिर में दाल आ रहा है तो उसको कसीदा दालिया कहते हैं, अगर आखिर में लाम है तो उसको कसीदा लामिया कहते हैं। बात समझ में आ गई। और फिर इसका शायर एहतमाम करता है कसीदे के आगाज में हर्फ रवि जो आ रहा है तमाम अशार में वो उसी वजन पर वही हर्फ लेकर आता है, तमाम अशार में उसी वजन पर और वही हर्फ वो हर शेर के आखिर में लेकर आता है। तो यहां पर अतफालहा है या अतफालुहा है? अतफालहा है तो पीछे युज़ज्जी पढ़ना पड़ेगा, और अतफालुहा है तो पीछे तुज़ज्जा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ेंगे यहां पर? तो साहिब जामी फरमा रहे हैं जब तक हर्फ रवि जो कसीदे का आखिरी हर्फ है उसकी हरकत का पता नहीं चलता कसीदे में से, तब तक यह फैसला नहीं हो सकता कि यह अतफालहा है या अतफालुहा है। तो यहां पर हर्फ रवि जो है ना लहा है, लहा। अब ये लहा है तो हर शेर, जिस कसीदे से यह शेर लिया गया है उसके हर शेर के आखिर में लहा आएगा, और अगर हर्फ रवि जो है वो लुहा है यानी लाम के जम्मा के साथ है तो फिर कसीदे के तमाम अशार में इस तरह होगा, तो यहां भी फिर इसी तरह। तो कसीदे के बाकी अशार से पता चल सकता है। मालूम हुआ ये शेर जिस कसीदे से लिया गया वो कसीदा साहिब जामी की नजर में नहीं आया, उसको किसने जिक्र आम नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने कहा दोनों एहतमाल हैं, दोनों में जिक्र कर देता हूं, लेकिन हकीकत अमर का पता नहीं चल सकता जब तक कसीदे के हर्फ रवि की हरकत का पता न चल जाए। तो कहते हैं वह हकीकतुल अमर ला तनकशिफु, इनकशफा यनकशिफू का माना है खुलना, जाहिर होना। वह हकीकतुल अम्र ला तनकशिफु, और मामले की हकीकत नहीं खुल सकती इल्ला बाद मारिफती हरकती हर्फिर रवी मिनल कसीदती, मगर बाद उसके कि जब जान लिया जाए कसीदे में से हर्फ रवी की हरकत को, फिर उसके बाद ही पता चल सकता है कि अतफालहा पढ़ना है या अतफालुहा पढ़ना है। अतफालहा पढ़ना है तो पीछे युज़ज्जी पढ़ना पड़ेगा, और अतफालुहा पढ़ना है तो पीछे तुज़ज्जा पढ़ना पड़ेगा मजहूल का सीगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।